ओम शांति। गहन ज्ञान योग तपस्या भट्टी का आज शुभारंभ हो रहा है। हम सभी राजयोगी होली हंस बहुत भाग्यवान है जो आज प्रथम दिन और प्रथम क्लास के लिए परम आदरणीय संतोष दीदी जी हमारे सन्मुख है। हम सभी एक हाथ की ताली बजाएंगे आदरणीय संतोष दीदी जी का। बहुत बहुत स्नेह भरा हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि दीदी जी का इस संध्याकालीन सभा में तिलक द्वारा और पुष्पों के द्वारा भी अभिनंदन करें। हमारी दीदियां बहने आदरणीय संतोष दीदी जी का मंगल तिलक लगाकर पुष्प देकर आप सभी की तरफ से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय संतोष दीदी जी सिद्ध योगी और धारणाओं में हिमालय समान ऊंचे और सुदृढ़ है। आप विशेष आत्मा को डायरेक्ट मम्मा बाबा ने अपनी पालना में पाला है। हमारी वरिष्ठ दादियों के अंग संग रहकर आपने बहुत लाभ लिया है। उनमें भी विशेष दादी ब्रिज इंद्रा जी के साथ बाल्यकाल से आपने ज्ञान योग और धारणाओं का बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास किया है। आदरणीय संतोष दीदी जी अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जॉइंट चीफ भी है एवं महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश जोन के आप जोन इंचार्ज भी है। महारथियों में भी सर्वश्रेष्ठ ऐसे महारथी वरिष्ठ दीदी जी का फिर एक बार आज हम सभी बहुत बहुत स्नेह भरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भट्टी का ये पहला शक्तिशाली क्लास हमें एकाग्र कर देगा, हमें योग में भी दृढ़ अचल कर देगा। आदरणीय दीदी जी से हम दृष्टि द्वारा भी लाभ लेंगे और अब दीदी जी हमें क्लास कराएंगे जिनका विषय है प्रवृत्ति में रहते उपराम वृत्ति और निमित्त भाव। तो अब आदरणीय दीदी जी से अनुरोध है आपकी शक्तिशाली दृष्टि किरणों से और प्रखर वाणी से हम सबको लाभान्वित करें परम आदरणीय संतोष दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके हमारी भोगी से योगी जीवन बना दिया, क्षुद्र से ब्राह्मण बना दिया। फर्श पर पड़े थे तो अर्श पर चढ़ा दिया। भक्ति मार्ग में कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमें सचमुच भगवान मिलेगा और उसके साथ हम सर्व संबंध निभाएंगे। इस सारे विश्व के अंदर बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्हें ये परम सौभाग्य प्राप्त होता है। वो ब्राह्मण बच्चे ही हैं जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा ब्रह्मा मुख से जन्म लेते हैं। पहले हम लोग ऐसा कहते थे कि भगवान जन्म देता है, पर कैसा जन्म देता है वो मालूम नहीं था। अभी जब हमें बाबा ने अपना बनाया और बाबा का बनने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कैसे बाबा ने हम बच्चों को स्मृति स्वरूप बना करके क्षुद्र से सच्चा सच्चा ब्राह्मण बना दिया, मर्जी व जन्म दे दिए। बाबा ब्राह्मणों को पैदा इसीलिए करते हैं क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ की संभाल करनी होती है, ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ चलता है। भक्ति मार्ग में हम भगवान से मदद मांगते थे, कोई भी काम होता था तो कहते थे भगवान हमको मदद करो, परंतु इस ज्ञान मार्ग में आके भगवान हम बच्चों से मदद मांगता है कि बच्चे आपकी पवित्रता की मेरे को मदद दो। अव्यभिचारी याद की तुम्हारी मदद दो, जिस मदद के आधार पर ये सारा विश्व अपवित्र से पवित्र बन जाए, नरक से स्वर्ग बन जाए। बाबा कभी बच्चों को घर बार छोड़ने की शिक्षा नहीं देते हैं, परंतु घर ग्रस्त में रहते हुए ही हमें पवित्र और योगी बनना सिखाते हैं। हम सभी के आगे बहुत बड़ा मिसाल है। ब्रह्मा बाप ने घर बार नहीं छोड़ा, उसके घर में ढेर के ढेर बच्चे आए, ढेर बच्चों का बाप बन गया। उनके साथ में रहते हुए सदैव न्यारा और प्यारा रहा। बाबा ने जो तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया, उस ज्ञान नेत्र के आधार पर देव और देह के जो संबंधी हैं, उनसे निराला बनने की, न्यारा बनने की बाबा ने जो सिखिया दिया, उसके आधार पर हम बच्चों के अंदर वो शक्ति आई। और सर्व के साथ रहते हुए भी, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहना उसने सिखा दिया। बाबा ने आके पहले पहले हम बच्चों के अंदर इस पुरानी दुनिया की सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन है, इस समय क्या परिस्थिति है, उसका वर्णन करके बताया कि ये जो पुरानी दुनिया है ये गई की गई, ये बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी है, ये अंतिम श्वासों पर है, ये पुरानी दुनिया शमशान है, ये रौरव नरक है। बाबा ने ऐसे ऐसे महावाक्य उच्चारण किया, जो महावाक्य सुनने के बाद हम बच्चों के अंदर वैराग्य वृत्ति पैदा हुई। जो है ही खलास होने वाली दुनिया, उससे दिल क्या लगाने, जो है ही शमशान तो मुर्दों से दिल क्या लगाने। तो बाबा ने ये सारी समझ देके, तीसरा ज्ञान का नेत्र देके हम बच्चों को इस सृष्टि के ऊपर प्रवृत्ति में रहते हुए भी उपराम बनना सिखाया। अभी का जो समय चल रहा है वो वापस घर जाने का समय है, इसीलिए हमें सदैव उपराम रहना है। उपराम अर्थात जो ऊपर राम रहता है उसके साथ बुद्धि का योग लगा के रहना, न्यारा रहना है। और हम सभी ने नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार इस बात का अनुभव किया कि जितना जितना पुरानी देह के संबंधी, पुरानी दुनिया, पराई दुनिया, पुरानी बातें, पराई बातें, पुराने संस्कार, इन सभी से जितना जितना हम परे होते गए उतना उतना हमारा जीवन हमें प्यारा लगने लगा। न्यारा और प्यारा बनने का बाबा ने ऐसा बैलेंस सिखाया हम बच्चों को, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान बना दिया। कैसा कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, परंतु सदैव कैसा उससे अलिप्त रहता है, उसको कभी स्पर्श तक भी नहीं करता है। तो बाबा ने बच्चों को ये कला सिखाई कि भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, दुनिया में रहो, पर दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे अंदर सदैव एक बाबा की याद रहे, सदैव अपना घर याद रहे, सदैव अपनी नई दुनिया याद रहे। इसीलिए साकार बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे तुम्हारे एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति होनी चाहिए। जब तुम्हारे एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति होगी तो ये जीवन बंधन वाली दुनिया तुम्हें याद भी नहीं आएगी। ये सब कुछ हमको साकार ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में करके बताया कि कैसे सारा कार्य व्यवहार संभालते हुए बाबा की स्थिति कितनी उपराम थी, कितनी न्यारी थी। इसीलिए बाबा सभी का बहुत बहुत प्यारा था और प्यारा है, क्योंकि जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, उस दिन से लेकर के ब्रह्मा बाबा ने कभी भी तन को अपना नहीं समझा। बाबा हमेशा यही कहते थे कि ये शिव बाबा का रथ है, ये नंदीगण है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा तन। बाबा की डिक्शनरी में दो बातों का, दो शब्दों का अभाव था, एक मैं और दूसरा मेरा। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां से आया। तो सदैव जब हम बाबा को देखते थे सामने तो शिव बाबा ही दिखाई पड़ते थे, क्योंकि बाबा के नयनों में बाबा की याद इतनी समाई हुई थी और शिव बाबा तो उसकी विकृति में बैठा ही था। तो बाबा को सदैव यही याद रहता था कि ये जो यज्ञ है ये भोलेनाथ का यज्ञ है, नहीं तो इतना बड़ा यज्ञ संभालना, 350 बच्चों का ध्यान रखना और सब कुछ करते हुए फिर भी न्यारा रहना, ये प्रैक्टिकल में करके बताया। भक्ति मार्ग में भगवान के लिए गायन करते हैं कि तूने सब कुछ किया, परंतु सब कुछ करते हुए तुमने अपना आप छुपाया। तो शिव बाबा के जो भी गुण थे और जो भी गुण हैं, वो शिव बाबा ने निरासाकार के द्वारा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में बताए कि कैसा न्यारा और प्यारा रहा जाता है। तो सदैव ब्रह्मा बाप को यही याद था कि ये सब बच्चे शिव बाबा के हैं, ये यज्ञ शिव बाबा का है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। जब अपने को निमित्त मात्र समझते हैं, निमित्त मात्र समझने से निर्माणता आती है, कर्तापन का भान भूल जाता है, करण करावन हार स्वामी सदैव याद रहता है। आप मम्मा की मुरलियां भी सुन रही है तो मम्मा का भी ये पाठ इतना पक्का था, सदैव मम्मा हमें याद दिलाती थी कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चलाए रहा है और हम जो कठपुतलियां हैं वो उसके हुक्म पर नाच रही। आपको मालूम है कठपुतली जो होती है वो तो निर्जीव होती है, उसमें चेतनता नहीं होती है, वो कोई नाच नहीं सकती है, परंतु उसको नचाने वाला पीछे होता है या ऊपर होता है जो धागे से उसको नचा। तो वैसे ही मम्मा सदैव ये याद रखती थी कि हम जो कठपुतलियां हैं बाबा की, हमको वो नचाता है, अर्थात हमारे द्वारा कार्य कराता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, करण करावन हार स्वामी वोई। तो जितना जितना करण करावन हार स्वामी की स्मृति रहती है, तो कभी भी कर्तापन या अहंकार नहीं आ सकता है, क्योंकि कराता वो है। किसके द्वारा कराएगा? हमारे द्वारा ही तो कराएगा, क्योंकि हम जो भी बच्चे हैं, हम सब उसके राइट हैंड है। हमारे द्वारा ही वो औरों को अनुभूतियां कराएगा, हमारे द्वारा ही बच्चों के द्वारा वो प्राप्तियां कराएगा। क्योंकि हम देखते हैं, अगर किसी को भी कोई चीज देनी होती है तो कैसा देंगे आप? हाथ से देंगे ना? आज एक छोटा सा रुमाल भी देना होगा तो हाथ से देंगे, लेने वाले भी हाथ से लेंगे। हम बाबा के सब हैंड्स हैं, राइट हैंड्स हैं। तो बाबा इसीलिए हमारे द्वारा सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां जो है वो सारे विश्व को कराता है। परंतु अगर हमारे अंदर वो कर्तापन का भान आ जाता है कि मैं करता हूं, तो प्राप्ति ना सामने वाले को होती है ना मुझे उससे कुछ फायदा होता है। तो ये प्रैक्टिकल में देखा कि बाबा को कितना ये याद रहता था कि ये सब कुछ जो करता धरता है वो ही है, और मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, बाबा के डायरेक्शन के ऊपर चल रहा हूं। ये तन भी उसका हो गया, बाकी मेरा क्या रहा? मैं तेरा और तू मेरा, इसके बगैर उसको कुछ भी याद नहीं था। बाबा ने बच्चों को बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से, बहुत लाड से पाला, परंतु हम देखते थे बाबा ने पालना ऐसी श्रेष्ठ दिया बच्चों को साकार के द्वारा, और साकार ने भी, जो देवताएं भी अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, इस दुनिया के बाप तो क्या बच्चों को पाले। परंतु बाबा जितना ही प्यारा था उतना न्यारा भी बहुत था। हम हमेशा अनुभव करते थे जब पार्टी लेके बाबा के पास आते थे और जब बाबा विदाई देते थे तो बाबा में कितना न्यारापन था। जब भी आते थे और सारा समय जब रहते थे हम जितना भी दिन, कितना प्यार करता था, कितना ध्यान रखता था, परंतु जब जाते थे तभी एकदम जैसा डिटैच। छोटे बड़े बूढ़े जो भी जाते थे उनके आंखों में आंसू होते थे, कोई भी जाना नहीं चाहते थे, परंतु बाबा तो जैसे एकदम न्यारा, एकदम फरिश्ता होकर खड़ा होता था। और बाबा बच्चों को हाथ हिला करके, रुमाल हिला के विदाई देता था, उससे लोगन पक्का कराता था, खुश रहो, आबाद रहो, और ना विसरो ना याद रहो। खुश भी रहो, आबाद भी रहो, भूलना भी नहीं और याद भी नहीं रहना। तो बाबा की देखो कितनी न्यारी और प्यारी स्थिति थी, याद भी करता था और भूल याद करते हुए भी जैसा कि भूला हुआ। तो ये प्रैक्टिकल में देखा कि कैसा बाबा ने हम बच्चों की पालना की, हमारे अंदर वो न्यारापन लाया कि ये जो भी है ये सब कुछ विनाशी है, हमारे सर्व अविनाशी संबंध एक ही बेहद बाबा के साथ है। इस सृष्टि में रहते हुए उपराम रहना सीख जाओ, सदैव अपनी बुद्धि को ऊपर लगा करके रखो और कार्य व्यवहार करते रहो। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बड़ी अच्छी युक्ति बताई कि जब तुम अमृत वेले उठते हो उस समय पर ये संकल्प करो कि हम अभी अभी बाबा के साथ ऊपर से नीचे अवतरित हुई, मैं अवतरित हुई हुई आत्मा हूं। क्योंकि अवतार जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, अवतार जो होते हैं उनकी कभी किसी से अटैचमेंट नहीं होती है, अवतार जो होते हैं वो हमेशा न्यारे रहते हैं। तो जब तुम ये ख्याल में रखेंगे, जैसे बाबा कहता है कि मैं इस ब्रह्मा के तन में अवतरित होता हूँ, वैसा तुम रोज मेरे साथ साथ ऊपर से नीचे अवतरित हो, तो सारा दिन क्या होगा, तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वापस जाना और फिर आना, जाना और आना। ये जो बाबा कहता है जिन माफक तुम प्रैक्टिस करो, जब कार्य व्यवहार पूरा हो जावे तो ऊपर चले जाओ, अपने वतन में चले जाओ, अपने घर में चले जाओ, जब कार्य व्यवहार करना होगे तभी वापस नीचे आओ। अभी हम अगर याद रखते हैं कि हमको 5000 बरस हो गए अपना घर छोड़ने को, तो उस प्रैक्टिस के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए बाबा कहता था कि अभी अभी आए हैं, ये याद रखो, अभी अभी आए हैं और अभी अभी हमको वापस जाना है। तो जब ये याद रहेगा कि हम अभी अभी आए हैं और अभी अभी जाना है, तो तुम्हारी बुद्धि आप ही उपराम हो जाएगी, आप ही न्यारी हो जाएगी, क्योंकि आए हैं और जाना है। किसके लिए आए हैं? धर्म स्थापन अर्थ आए, अवतार होते ही है धर्म स्थापन करने के लिए। जब तुम्हें ये याद रहेगा कि हम धर्म स्थापन अर्थ आए हैं, तुम्हारे से कोई अधर्म का काम नहीं हो सकेगा, सदैव धर्म का ही काम करेंगे। धर्म का मतलब धारणाएं, बाबा ने जो हमें नियम बताए हैं, जो धारणाएं बताई हैं, उन धारणाओं पर सदैव चलते रहेंगे। बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन पक्का कराया था, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, मरना भी पड़े, धरती पर गिरना भी पड़े, परंतु अपना धर्म अर्थात अपनी ईश्वरीय धारणाएं जो है, वो हमें ब्राह्मण कुल की धारणाएं कभी भी छोड़नी नहीं। तो अगर हम उन धारणाओं को पकड़ के चलते हैं, तो हमारी बुद्धि कहाँ भी अटकती नहीं है, हम सदैव न्यारे रहते हैं। बाबा ने बच्चों को प्रवृत्ति में रहते हुए ये पाठ पक्का कराया कि अपने को गृहस्थी नहीं, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ करके चलो। जब अपने को तुम ट्रस्टी समझ के चलते हो कि ये सब कुछ मेरा नहीं परंतु उसका है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र, मैं सिर्फ संभालने वाला हूँ, मालिक तो मेरा वो है। तो जब तुम्हें मालिक याद रहेगा, तो किसी में भी तुम्हारी बुद्धि जो है वो कभी भी अटकेगी नहीं, तुम्हारे में न्यारापन आता जाएगा। तो उपराम बनने के लिए, निमित्त भाव लाने के लिए, एक तो अपने को ट्रस्टी समझने की आवश्यकता है, और दूसरा साक्षी दृष्टिया होकर के पीछे इस खेल को देखने की आवश्यकता। जितना जितना हम साक्षी बनते जाते हैं, साक्षी स्थिति हमको न्यारा बनाती है। साक्षी स्थिति ऐसी है जो हमको सच्चा हीरा भी बनाती है और इस वर्ल्ड ड्रामा में हीरो का पार्ट भी बजाने को लगाती है, इतना न्यारापन हमारे अंदर आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि साक्षी होके इस खेल को देखो। तो हमने देखा ब्रह्मा बाबा इतना सारा कार्य व्यवहार करते हुए, इतने बच्चों को संभालते हुए, इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए सदैव साक्षी रहा, सदैव न्यारा रहा, सदैव डिटैच रहा, साक्षी होके देखता रहा, खुद का पार्ट भी साक्षी होके बजाया, औरों के पार्ट को भी साक्षी होकर के देखा। इसीलिए बाबा की स्थिति सदैव अचल और अडोल रही, और मम्मा ने बाबा को पूरा पूरा 101% फॉलो किया। इसीलिए आज भी देखो, हमेशा आसमान में देखेंगे तो ध्रुव तारा किसका प्रतीक है? मम्मा का प्रतीक। कुछ भी हो जावे, परंतु उसने कभी अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं किया। दूसरे सितारे आप देखेंगे ना, तो इधर के उधर, उधर के उधर होते रहते हैं। तो बाबा हमेशा बताते थे, बच्चे देखो, एक है ये आसमान का तारा मंडल और तुम्हारा है धरती का तारा मंडल। तो ये धरती के तारा मंडल में ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, और फिर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है, ध्रुव सितारा मम्मा। और सितारे भले अपनी जगह छोड़े, परंतु ध्रुव कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। तो सचमुच हमने देखा कि कितनी भी परिस्थिति आई, कुछ भी हुआ, परंतु मम्मा अपनी स्वस्थिति में हमेशा रहे, कभी भी हलचल में नहीं आई। मम्मा के ऊपर कितना बड़ा हिसाब किताब का पेपर आया, शारीरिक हिसाब किताब का, पर अंत तक अगर आप मम्मा का चेहरा देखेंगे तो चमकता था, मम्मा का चेहरा मुस्कुराता हुआ ही रहा। तो ये क्यों? क्योंकि साक्षी होकर के पाठ बजा रही, न्यारी होकर के पाठ बजा रही थी। तो बाबा हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि तुम न्यारे होकर के पाठ बजाओ तो हीरो बन जाएंगे तुम इस ड्रामा के, न्यारे होकर के बजाओ तो एक सच्चा हीरा बन जाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का लेप छेप नहीं लगेगा, तुम्हारे अंदर ऐसा न्यारापन आता जाएगा। उसके बाद बाबा को सदैव ये बेहद का ड्रामा याद था। बाबा को नथिंग न्यू का पाठ पक्का था, कुछ भी होता है नया नहीं, कलब पहले वाला ही है। कोई बात नई होती है ना तो आश्चर्य लगता है, जैसा प्रश्न चिन्ह जो है वो स्थिति को डगमग करता है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। कभी कोई ऐसा बोलते अरे ये क्या हो गया, कोई नहीं अचानक बात हो जाती तो ऐसा ये क्या हुआ, बाबा बोलते हैं फेल हो गए तुम, तुमको ड्रामा याद नहीं इसीलिए तुमको धक्का लगा, ये क्यों हुआ, नया थोड़ा ही हुआ, ये कलप कलप ऐसा ही होता है। तो बाबा को ये जो पाठ था ये बाबा ने प्रैक्टिकल में बताया कि मेरे को देखो कितना पक्का है ब्रह्मा बाबा। इसीलिए भले समाज ने कितना भी ऑपोजिशन किया, देशवासियों ने किया, परदेश वालों ने किया, पेपरों में कितना उल्टा सुलटा पड़ा, परंतु बाबा कभी डगमग नहीं। बाबा कहता था ये कल पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा ही हुआ। कभी कभी ऐसा होता था सिंध वाले घमसान कर करके थक जाते थे, चुप हो जाते थे, बाबा कहता था ये क्या आजकल ये कुछ करते नहीं क्या बात, मतलब बाबा मनोरंजन करता था, वो लोग जो भी करते थे बाबा उससे अपना मनोरंजन करता था, मन को कभी रंज नहीं करता था, दुखी नहीं करता था। तो न्यारा रहने में और ड्रामा को याद करने में और साक्षी होने में कितना फायदा है ये बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बताया। तो मैं निमित्त मात्र हूँ, ये यज्ञ बाबा का है, ये पाठ बाबा ने हमेशा ही पक्का करा। तो वैसा ही बाबा ने प्रवृत्ति वालों को भी ये पक्का कराया हुआ है कि आप भी प्रवृत्ति में रहो परंतु निमित्त मात्र रहो, उपराम होकर के रहो, न्यारे होके रहो, तो आपको फायदा ही फायदा। जिस प्रकार बाबा ने बच्चियों को सेवा स्थान दिए सेवा करने के लिए, वैसे ही बाबा ने प्रवृत्ति वालों को भी घर नहीं दिया है रहने के लिए, सेवा स्थान दिया। आप अगर उसको मेरा घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, परंतु अगर ये याद रखेंगे कि ये बाबा का सेवा स्थान है, बाबा ने मुझे सेवा के लिए यहाँ रखा हुआ है, तो आप सदैव न्यारे रह सकेंगे, सदैव उपराम रह सके। मेरा समझना मेरा आया मन मरा, माया तो देखती रहती है यही कि ये मेरे के चक्कर में फंसे और मैं इसको मारूं, इसका गला दबाऊं। इसीलिए कभी भी मेरा नहीं समझना। बाबा ने हम बच्चों को तेरे का पाठ पक्का कराया, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा तो सब कुछ तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए प्रवृत्ति में रहते हुए आपके ऊपर डबल पार्ट जवाबदारी, एक तो बाबा ने आपको काम दिया चैरिटी बिगिंस एट होम, आप पहले अपने घर वालों का उद्धार करो, उनको बाबा का बनाओ। अब बनाते रहो, सुने नहीं सुने, थोड़ा बहुत उसको ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाना उनको, वो ज्यादा पसंद नहीं करते, घर वाले ज्यादा ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते हैं, हमारा परिवर्तन देखना पसंद करते। आप ज्ञान सुनाएंगे वो बोलेंगे बस हो गया, हमने बहुत सुना है, जरूरत नहीं हमको सुनने। परंतु अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और बाबा ने देखो हमेशा हम बच्चों को ये बताया, सेवाएं अनेक प्रकार की हैं। आप मुख के द्वारा ज्ञान का दान कर सकते, ज्ञान की सेवा कर सकते, मनसा के द्वारा आप योग की सेवा कर सकते, शांति का दान दे सकते और कर्मों के द्वारा आप गुणों का दान दे सकते। सबसे बड़ी सेवा है गुणों का दान। तो इसीलिए प्रवृत्ति में रहते हुए भी अगर गुणों का दान देते हम, बाबा ने जो हमें दिव्यता सिखाई है उस दिव्यता को साथ में लेकर के चलते हैं तो घर वालों के ऊपर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। परंतु अगर हम लिप्त होकर चलते हैं, फंस के चलते हैं उसमें, मेरा समझ के चलते हैं, तो मेरा समझने के कारण क्या होता है, आप कितना भी ज्ञान सुनाएंगे ना वो आपसे सुनना चाहेंगे और ना वैसा बनना चाहेंगे। इसीलिए जितना हो सके उतना न्यारा बनने के लिए हमेशा ये याद रखो कि बाबा ने मेरे को विशेष ये सेवा स्थान दिया है, मेरे को सेवा करनी है। एक तो जो हमारे रिश्तेदार है उनकी सेवा करनी है और दूसरा सारे विश्व की सेवा करनी है। उसके लिए हमको योग का दान देना है, उसके लिए हमको ज्ञान का दान देना है, अपनी मनसा को सदैव बाबा के साथ लगा के रखना है। और जिस समय हम ये समझते हैं कि ये घर नहीं है परंतु ये मंदिर है, ये आश्रम है, आश्रम का मतलब क्या होता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ पर स्वच्छता है, उसको आश्रम कहा जाता है। तो नेचुरल है हमारी जीवन स्वतः ही क्या होती है, पवित्र बनती जाती है। और आश्रम किसका है, जिसका होगा उसकी याद तो आएगी ना, बाबा का घर। तो अपना घर नहीं परंतु ये बाबा का घर है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, बहुत बोलते हैं ये सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा का। ये तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही बोलते थे ना, मंदिर में जाएंगे तभी कहेंगे भगवान के आगे जाके, मूर्तियों के आगे जाके कहेंगे हे भगवान जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, और घर में आएगा तो जो तेरा है सो भी मेरा। तो ये भी अगर इधर भी ऐसा ही किया अगर हमने कि ये सब कुछ बाबा का है और फिर हम अपनी मत पर चलते रहे तो बाबा का कहाँ हुआ, वो तो मेरा ही हो गए। तो मेरा हो गया तो ये मेरे का फेरा ऐसा है जो माया इसमें बहुत हैरान करती है। उपराम स्थिति तो क्या, कोई भी स्थिति नहीं रह सकती, स्थिति हमेशा डगमग होती रहती है। आप थोड़ा सा विचार करो, आप जिसके ऊपर बैठे हो अगर इसका बैलेंस ठीक नहीं है, बैठने सोफा है या कुर्सी है, तो डगमग होता है ना, हिलता है, आपको मजा आएगा? तो जिसकी स्थिति डगमग होती है वो हमेशा क्या होता है, हिलता रहता है, बेजार रहता है, वो उसको कोई अनुभूतियां नहीं हो सकती है। इसीलिए बाबा कहता है सदैव स्वमान की सीट के ऊपर सेट हो जाओ। बाबा ने हम बच्चों को 365 दिन के लिए 365 स्वमान दिए हुए, एक दो स्वमान नहीं दिया है। आप रोज नया नया स्वमान याद कर लो बाबा, कभी विश्व कल्याणकारी बन जाओ, कभी शांति दूत बन जाओ, जो चाहिए आपको, जो अच्छा लगे वो स्वमान आप याद कर लो, तो क्या हो जाएगा, उस स्वमान में स्थित होने से स्थिति कभी भी डगमग नहीं होगी। परिस्थितियां आएगी, ये बाबा ने बता दिया, परिस्थितियां अंत तक आने वाली है, माया ऐसा ही छोड़ने वाली नहीं है। कैसा छोड़ेगी बोलो माया, हम आधा क्लब से माया के ग्राहक हैं और बहुत अच्छे ग्राहक हैं हम माया के। कभी उससे काम खरीद कर लिया तो कभी क्रोध ले लिया, तो कभी लोभ ले लिया, कभी मोह ले लिया। अभी 2500 बरस जिसके हम ग्राहक रहे उसको हम छोड़ के अगर ईश्वर से सुख शांति लेना चालू करेंगे उसको अच्छा लगेगा? आज थोड़ा दिन अगर किसी दुकानदार से आप सामान लो और उसको छोड़ के दूसरे दुकान पर जाओ तो वो क्या करता है, अरे इधर आओ, तुम तो मेरा पुराना ग्राहक है, वहां का कोई जाता है, मेरे से सामान लो ना, तुम उधर क्यों जाते हो, ले जाओ, पैसा नहीं देना, ले जाओ ऐसा ही ले जाओ, अपना ग्राहक को छोड़ना नहीं चाहते। तो माया कैसा छोड़ना चाहेगी बताओ आधा कल्प के ग्राहकों को, इसलिए वो पीछे ही लगी रहती है। परंतु बाबा कहता है उससे कभी भी घबराना नहीं, तुम अपनी स्वस्थिति में रहो। देखो दो बातें हैं, एक है मेरी स्वस्थिति, दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति जो है वो अंदर से आती है, परिस्थिति जो है वो बाहर से आती है, ठीक है? दोनों का रास्ता अलग अलग है। स्वस्थिति का रास्ता अंदर से आने का है, परिस्थिति का रास्ता बाहर से आने का है। तो आपस में जब रास्ते ही अलग है तो टकराने की बात ही नहीं है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, स्वस्थिति के लिए जो समय देना चाहिए स्वस्थिति के लिए जो शक्तियां लगानी चाहिए वो क्या करते, परिस्थिति में उलझ के वो सारा उसमें लगा देते। जब वो शक्तियां और समय हम परिस्थिति में लगा देते हैं तो हमारी स्थिति डगमग हो जाती। तो इसीलिए हमारे को सदैव ये याद रखना है कि परिस्थिति आएगी, अंत तक आएगी, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध के मैदान में है तो सामने है, जरूर दुश्मन हमारे ऊपर वार तो करेगा ना, परंतु बाबा ने हम बच्चों को सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं। बाबा ने जो अस्त्र शस्त्र दिए ज्ञान के, उसको क्या करो, यूज करना सीख जाओ। अगर हम यूज नहीं करेंगे एक दिन वो लूज हो जाएंगे। आज कोई भी चीज है ना, समझो ये माई की है, हम इसको दो चार बरस यूज नहीं करते फिर निकालेंगे तो खराब हो जाएगा, काम में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार बाबा जो हमें ज्ञान रूपी शस्त्र देता है, अगर हम उसको यूज नहीं करते तो भी लूज हो जाते, कलर्स हो जाते। हम सिर्फ खुश हो गए कि हमारे पास बाबा ने बहुत ज्ञान भरा है, बहुत शस्त्र दिए, तो उसको यूज क्यों नहीं करते। तो जितना जितना यूज करेंगे, पर यूज कौन कर सकता है, जो घड़ी घड़ी ज्ञान को रिवाइज करते। जैसा जैसा हम उसको रिवाइज करते हैं ज्ञान को, बाबा हमेशा बाबा की मुरली में देखो होता है कि बच्चे विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करना माना ज्ञान को चबाना। जब तक तुम उसको चबाएंगे नहीं तब तक वो हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा तो तुम्हारे को तुम्हारा ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो शक्ति कहां से आएगी। तो जैसा भोजन जो है वो हमारे को चबा के खाने के बाद शक्ति मिलती है, उसी प्रकार ये जो ज्ञान है ये विचार सागर मंथन करने के बाद उस शक्ति का रूप ले लेता और वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। जब हमारे पास वो शक्ति आ जाती है तो हम सहज ही परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, सहज ही हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम जो एक घंटा ज्ञान सुनते हो, अरे देखो जानवरों में भी अक्ल होता है, एक घंटा वो घास खाएगी समझो गाय, सारा दिन मुंह हिलाती रहती, चबाती रहती, उगारती रहती है। तो वैसा तुम सारा समय ज्ञान को उगारो ना अंदर ही अंदर। तो जितना जितना हम ज्ञान को रिवाइज करते हैं अंदर में, उतना उतना हमारे अंदर रियलाइज करने की शक्ति होती है, उतना उतना महसूसता शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। हमारे को मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमको क्या करना है। और देखो हमारा यादगार बताते हैं ना भक्ति मार्ग में, विष्णु जो है प्रवृत्ति मार्ग का यादगार है, विष्णु चतुर्भुज समुद्र के अंदर शेष शैया के ऊपर लेटा पड़ा है और बड़े आनंद में उसकी स्थिति बताते हैं, बहुत आनंदित है। उससे लक्ष्मी पूछती है आप कौन सी खुशी में हैं, वो बोलता है मैं अपने ईश्वरीय खुशी में। तो ये विचार सागर मंथन करने का यादगार है, प्रकृति के ऊपर विजय और पांच विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद हमारी स्थिति कैसी बन जाती है, खुशनुमा बन जाती। तो सागर में रहते हुए भी उससे न्यारा रहना, कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहना, और सदैव न्यारा रहने के बाद ही हम बाबा के प्यारे बन सकते, सर्व के प्यारे बन सकते। तो बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया हुआ है, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को मुझे अपना करके चलना। इसीलिए हमेशा कोई भी कर्म जो भी हम करते हैं वो ज्ञान युक्त बन करके बोल और कर्म करने हैं। अभी दो दिन पहले भी बाबा ने कहा कोई कोई सोचते बहुत है, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करने करेंगे कुछ भी नहीं। अभी देखना बाबा को भी तो दिलासे देते, बाबा आप देखना हमारी स्थिति आगे चल के बहुत अच्छी हो जाए। अरे आगे चल के थोड़े अभी अच्छी करके बताओ ना, आगे आगे कौन सा आने वाला है समय, ये तो बताओ आगे क्या होने वाला है। अभी अगर अच्छी नहीं तो आगे कैसे अच्छी होगी। तो अभी से हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना पड़ेगा ना। तो मजबूत बनाने के लिए स्थिति को हमारे को हमेशा जैसा बाबा याद रहे वैसा ही ड्रामा भी हमेशा हमको याद रहे। ड्रामा की पॉइंट ऐसी पॉइंट है जो स्थिति को एक रस बना देती है, एकदम अचल और अडोल बना देती। भक्ति मार्ग में गायन करते थे सारी सृष्टि तेरे सूत्रधारी, ये जो सारी सृष्टि है, सारे सृष्टि के मनुष्य हैं, ये सारी सृष्टि है, भगवान को कहते थे तेरे सूतर में तेरे धागे में बांधी हुई है, परंतु बाबा ने आके बताया ये मेरे सूतर में नहीं, ये ड्रामा के सूतर में बांधी। हर एक आत्मा जो भी पार्ट प्ले करती है वो ड्रामा प्लान अनुसार ही करती, हर एक कोई ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। इसीलिए आप किसी के साथ भी कार्य व्यवहार करते हुए हमेशा ये याद रखो कि ये जो एक्टर है ये अपना पार्ट बड़ा एक्यूरेट बजा रहा है, ये अपना पार्ट ठीक बजा रहा है, मुझे मेरा पार्ट ठीक बजाना है। क्योंकि ये संगम युग है, समय की भी अगर यादगार रहती है ना तो हमारा हमारे ऊपर अटेंशन रहता है कि अब ये समय कौन सा चल रहा है। संगम युग देखो कितना छोटा सा युग है, और युगों की भेंट में तो इसकी आयु कितनी छोटी है, उसमें भी हम देखते हैं छोटी सी आयु, युग की छोटी सी आयु होते, कोई कभी आया कोई कभी आया, कोई कितने देरी से आए कोई अभी आए कभी कभी आए मुझे, तो इतने थोड़े समय में हमारे को ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य क्या है, ब्राह्मणों का बाप समान बनने का लक्ष्य है, अव्यक्त बनने का लक्ष्य है, फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। क्योंकि हमें मालूम है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, जब तक हम फरिश्ता नहीं बने तो देवता नहीं बन सकते। तो फरिश्ता बनना है तो बाबा ने कहा बच्चे अभी से फरिश्ता बन जाओ, फरिश्ता माना हल्का, डबल लाइट। तो घर गृहस्थ में रहते हुए प्रवृत्ति में रहते हुए सारा बोझ बाबा कहता है तुम मेरे को दे दो और खुद निश्चिंत तो हो जाओ। आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कहेगा तुम तेरा बोझ मेरे को दे दो, और ही वो बोलेगा मेरा बोझ तू उठा। यहाँ तो बाबा कहता है तुम सारा बोझ मेरे को दे करके तुम निश्चिंत तो हो करके क्या करो, बाबा को याद करो। तो जब हम सारा बोझ बाबा को दे देते हैं, प्रेम से उसके हवाले सब कुछ कर डालते हैं, तो क्या होते हैं, हम एकदम हल्के हो जाते हैं। बाबा रिस्पॉन्सिबल बैठा है, मेरे को कुछ नहीं करना है, बाबा जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। शुरू शुरू की आपने हिस्ट्री सुनी होगी, कितना बड़ा 350 भाई बहने यज्ञ में थे, उस समय बेगरी पार्ट चला, यज्ञ में एक दाना भी नहीं था खाने के लिए, परंतु उस समय भी बाबा की स्थिति क्या जबरदस्त। बाबा का जैसा आप फोटो देखते हैं ना, सदैव बाबा का चेहरा ऐसा ही, एकदम निरसंकल्प, एकदम खुशी में, आनंदमय। इतनी आनंदमय स्थिति कैसी रही, क्योंकि बाबा ने कभी भी अपना नहीं समझा, ये सब कुछ ही बाबा का है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। निमित्त समझने से न्यारापन आता है। बच्चे बाबा के है, यज्ञ बाबा का है, बाबा बैठा है बाबा संभालेगा, और बाबा नहीं संभाला, और आज भी कौन संभालता है, कौन किसको संभाल सकता है, वही संभालता है। परंतु हम जो समझते हम करते हैं, ये जो कर्तापन का भान है ना ये नीचे गिराता है, कर्तापन का भान और विकारों को लाता है, परंतु निमित्त समझने से क्या होता है, ये सब कमजोरियां दूर हो जाती। निमित्त समझने से हल्कापन आता है। फरिश्ता बनने के लिए हमको निमित्त जरूर समझना पड़ेगा, अगर मैं करता हूं अगर ये आया तो फिर करता तो फिर फंसेगा, जाएगा कहां, जो करता है उसको भरना पड़ेगा ना, पर मैं करता ही नहीं हूं वो करा रहा है, हम उसके डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं तो जवाबदार वो हो गया। बाबा ने कितनी बारी तो ये भी कहा ना, अगर समझो मैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कोई भी कुछ करता है, अगर कोई गलती भी होती नहीं है पर हो भी जावे तो भी मैं बैठा हूं, मैं आप ही ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं जवाबदार हूं। तो ब्रह्मा ने जैसा सर्वस्व दे दिया एक धक से, शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ गया, वैसा अगर हम एक धक से उसके ऊपर बलि चढ़ जाते हैं तो वो हमारे को इतनी ही मदद करता है। परंतु हमारी स्थिति के ऊपर है कि हम उसके कितने हवाले होते हैं। हम कहते तो है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, परंतु सचमुच ये प्रैक्टिकल में मेरा एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है। जब बाबा ही मेरा संसार है तो फिर ये संसार, ये कहाँ से आया संसार, कहाँ से आए बच्चे, कहाँ से आया घर बार। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, ना मेरा संसार है ना मैं संसारी हूँ, मैं तो सबसे न्यारा हूँ। अगर ऐसा समझ के रहेंगे तो स्थिति सदैव उपराम रहेगी। ये बाबा का संसार है, बाबा ही संभाले, बाबा का ही ये सब कुछ है। बाबा तो एक पहले बीच में अभी समझा रहे थे, अरे छोटा बच्चा होता है सारा दिन क्या बोलता रहता है, बा 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 बा, सारा दिन आप देखेंगे उसके मुंह से यही निकलता है, बा 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 निकलता है। तुम तो इतने बड़े बड़े हो, तुम बाबा को नहीं याद कर सकते। वो बच्चा बाबा बाबा करता रहता है। तो हमको अगर सदैव बाबा बाबा याद रहेगा, माया की ताकत नहीं आने की। माया आती कभी है, जब ही बाबा भूलता है। कोई कोई कहते हैं हमको माया ने भुला दिया, माया ने भुलाया नहीं, माया ने याद करा दिया, भूल गए इसीलिए माया ने आके थप्पड़ लगाया। ये कहाँ जा रहे हो, क्यों भूल रहे हो बाबा को। कभी कभी आप देखते हो ना, बाबा बोलता है ये माया ना मेरी बड़ी ही ईमानदार बेटी है। हम कहते हैं हमारी दुश्मन है, हमारे बाप की बेटी है। पर क्यों बेटी बोलता है, क्योंकि वो बाबा के बच्चों को बाबा की याद दिलाती है। हम जब भूलते हैं बाबा को, भूलते हैं तभी माया आती है। जब हमारे अंदर कमजोरी होती है तभी माया आती है। बीमारी कभी आएगी, शारीरिक कमजोरी होगी तो बीमारी आएगी ना। तो वैसे ही जब मानसिक कमजोरी होती है तभी माया आती है। तो हमारे को कभी भी कमजोर नहीं बनना है, हमको सदैव शक्तिशाली रहना है। इसीलिए सर्वशक्तिवान जो है उसकी याद हमारी सदैव बनी रहे। तो जितना जितना हम सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लेते हैं, अपने साथ में रखते हैं उसको, तो माया को आने की ताकत ही नहीं होती है। वो आ ही नहीं सकती है, उसका काम ही नहीं आना, भाग जाती है, दूर से ही भाग जाती है। बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो माया तुम्हारे पास में नहीं आवे। वो माया आएगी फिर तुम उसको भगाएगी, इसमें तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, आवे ही नहीं ना माया। ऐसी पावरफुल स्थिति बनाओ जो माया तुम्हारे पास आवे ही नहीं। वो कभी हो सकती है पावरफुल स्थिति, जब सब बातों से न्यारे हो जाएंगे तभी क्या होगी, तभी ऐसी पावरफुल स्थिति होगी। बाबा की याद में रहेंगे तभी पावरफुल स्थिति होगी। तो सदैव सवेरे अमृत वेले से लेके रात को सोने तक याद की लिंक बनी रहे, इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होता है, अमृत वेले बाबा को याद कर लिया, फिर रात को सोने के समय सवेरे गुड नाइट हो गया, रात को सॉरी सवेरे है गुड मॉर्निंग हो गया, रात को गुड नाइट कर देते, सारा दिन कुछ भी नहीं। नहीं, सारा दिन बाबा की याद रहे। बाबा ये जो ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह करने को हमको लगाता है, किसके लिए लगाता है, कि हमारी बुद्धि लगी रहे, इधर उधर नहीं भागे, व्यर्थ संकल्प नहीं चले। व्यर्थ संकल्प नहीं चले तो समर्थ संकल्प चलने चाहिए। बाबा कहता है तुम चार्ट लिखते हो, हमने कोई विकर्म नहीं किया, पाप कर्म नहीं किया, पर पुण्य कर्म क्या किया वो भी तो लिखो। पाप कर्म तुमने नहीं किया तो पुण्य कर्म क्या किया वो तो लिखो, मालूम पड़े। पाप नहीं करेंगे तो पुण्य तो करना चाहिए। तो सर्व को जीवदान देना, ये है सबसे बड़ा पुण्य कर्म। और जीवदान किसके द्वारा मिलता है, ज्ञान अमृत के द्वारा जीवदान मिलता है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना अनेक आत्माओं की सेवा करते रहना और खुद शक्तिशाली रहना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात। जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके चलते हैं, उतना उतना क्या होता है, हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। हमको सेवा नहीं करनी पड़ती, पर सेवा हमारे पीछे आती है, क्योंकि जहां लाइट होगी वहां तो आएगी ना। तो हम जितना जितना लाइट बनते हैं उतना उतना उसका फायदा होता है, अनेकों को रास्ता बताने के लिए निमित्त बनते हैं। तो लाइट बनना है तो उसके लिए न्यारा बनना पड़ेगा, निमित्त बनना पड़ेगा। वापस घर जाना है तो उपराम स्थिति रखनी पड़ेगी, सदैव ऊपर रहो, आओ नीचे कार्य करो फिर वापस ऊपर चले। आओ कार्य करो फिर वापस ऊपर चले जाओ। बाबा कहता था जिन बन जाओ, जिन आओ और जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये प्रैक्टिस पड़ जाएगी तुम्हारे को, तो अंत के समय तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगी शरीर छोड़ने के समय। एक सेकंड में शरीर छोड़ के तुम बाबा के पास चले जाएगी। ये ऋषि मुनि तपस्या किसके लिए करते, इसीलिए करते हैं कि हमारा अंत समय जो है वो सहज हो। तो बाबा ने, तो हम बच्चों को कहते, बाबा ने कहा ना, मरे हुए को कौन मारता है, मरे हुए को नहीं मारा जाता है, तुम तो मर गए ना पुरानी दुनिया से, तो इसीलिए तुम्हारे को ये दुनिया भूलने में कभी भी मेहनत नहीं लगनी चाहिए। मरे हुए को कुछ याद होता है क्या, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई नाचता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, आप मरे, मर गई दुनिया, उसके लिए सारी दुनिया ही मर जाती है। तो हमारे को ये मालूम नहीं पड़ता था आप हमारे मर गई दुनिया, अभी मालूम पड़ता है कि हम मर गए तो हमारे लिए तो पुरानी दुनिया मर गई या जिंदी है अभी तक। क्या बोलते हैं आप लोग, जिंदी है आप लोगों के लिए, जिनके लिए जिंदी है हाथ ऊपर करो, कोई नहीं करेगा, अभी कोई नहीं करेगा हाथ, परंतु चेक करना कि सचमुच जिंदे, अगर हम जिंदी है तो दुनिया जिंदी है, अगर हम जिंदे नहीं है तो दुनिया भी जिंदी नहीं। तो सदैव बाबा का बन करके चलो, सदैव अपनी जो स्थिति है, हमारी बुद्धि है, उसको उपराम रखो, बाबा की याद में रहो, औरों को रास्ता बताते रहो, यही बाबा हम बच्चों को सदैव संदेश देते हैं। ओम शांति।